बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता हफ़्ते की अहम तरीन रुदादों के जायज़े पर मुश्तमिल हफ़्तेवार प्रोग्राम ज़ाविये निगाह के साथ मोहम्मद मेहती शराफ़त हाज़िर है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम गुज़श्ता हफ़्ते की अहम तरीन रुदादों का जायज़ा लेते हैं। तो पहले अनावीन पर एक नज़र। गुज़श्ता हफ़्ते तेहरान में तेल, गैस और पेट्रो केमिकल मसनूआत की 19वीं बैन अल-अक़वामी नुमाइश हुई, जो जुमे को अपने अख्तिताम को पहुंची। इस नुमाइश में ईरानी कंपनियों के अलावा दुनिया के 33 मुल्कों की 600 से ज़ायद कंपनियों ने शिरकत की। मुलाहिज़ा फरमाइए इस सिलसिले में हमारी तज़ियाती रिपोर्ट।
तेल, गैस, पेट्रोलियम और रिफाइनरियों की 19वीं बैन अल-अक़वामी नुमाइश जुमे के दिन तेहरान में ख़त्म हो गई। दुनिया के 33 ममालिक के 600 मुख्तलिफ कंपनियों ने शिरकत की, जबकि ईरान की 1200 कंपनियों ने अपनी मसनूआत को नुमाइश के लिए पेश किया। ईरान में मुनक़िदा इस आलमी नुमाइश में इस मिसाली शिरकत को तवानाई के शुबे में एक अहम वाक़िया करार दिया जा सकता है। इस नुमाइश ने मुख्तलिफ कंपनियों को इस बात का मौका फराहम किया कि वो एक दूसरे की मसनूआत को करीब से देखें, बाहमी मुआहदे करें और मुख्तलिफ फनी मौजूआत पर तबादला ख्याल कर सकें। यूरोप और रूस की मुतादिद मारूफ कंपनियों ने ईरान में पेट्रोलियम की सनत में सरमायाकारी और ड्रिलिंग के शुबे में तआवुन का इंदिया दिया है। ईरान पर अमरीका की एकतरफा पाबंदियों के हवाले से भी मुख्तलिफ गैर मुल्की कंपनियों ने ईरान और 5+1 ग्रुप के ममालिक के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की कामयाबी के बारे में काफ़ी उम्मीदों का इजहार किया है। तजिया कारों का ख्याल है कि तेल, गैस, पेट्रोलियम और रिफाइनरी की इस 19वीं बैन अल-अक़वामी नुमाइश ने पेट्रोलियम के शुबे में मौजूद एक जमूद को तोड़ दिया है और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि अब ईरान की पेट्रोलियम की सनत में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के साथ साथ मकामी सतह पर भी इस शुबे की तरक्की में तेज़ी आएगी। ईरान और जर्मनी के दरमियान पेट्रोलियम और ख़ासकर तवानाई की नई अकसाम के बारे में तआवुन की खबरों ने पेट्रोलियम के शोबे में एक नई जान पैदा कर दी है। शमसी तवानाई और हवा की मदद से तवानाई पैदा करने के मुख्तलिफ मंसूबों के हवाले से हाल ही में ईरान के वजीर तवानाई और ईरान की कंपनी तवानीर के डायरेक्टर जनरल नीज जर्मनी की कई अहम कंपनियों के डायरेक्टरों के दरमियान बर्लिन में एक अहम मीटिंग भी हो चुकी है। ईरान में बैरूनी सरमायाकारी से जदीद मशीनरी की तैयारी और बिजली और तवानाई के शोबे में बराह रास्त सरमायाकारी भी तआवुन के मुख्तलिफ शोबे हैं, जिससे ईरान में पेट्रोलियम की सनत में मजीद तरक्की देखने को मिलेगी। पेट्रोलियम की सनत में रौनक आने से दीगर शोबों में भी तरक्की और पेशरफ बढ़ेगी, जिससे ईरान की मईशत पर नहायत ही मुस्बत असरात मुरतब होंगे। आलमी मॉनेटरी फंड या IMF ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में ईरान की मईशत के बारे में कहा है कि 2014 में ईरानी मईशत में बेहतरी आएगी और तरक्की की शरह 1.5% रहेगी, जबकि अफरात ज़र की शरह में भी नुमाया कमी की तवक्को है।
नाज़रीन, शाम में फ़ौज ने एक और अहम शहर को मगरिब और इलाके की रजत पसंद हुकूमतों के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों से पाक कर दिया है। हमारी एक और तज़ियाती रिपोर्ट।
शाम के शहर हम्स से दहशतगर्दों की पसपाई और फौज के कंट्रोल संभालने के बाद अमन बहाल होना शुरू हो गया है और सदर बशार असद ने एक बार फिर इस अज़्म का इहदा किया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर हाल में जारी रहेगी। गुज़िश्ता हफ्ते जुमे के रोज़ शामी फौज और मुखालफीन के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, जिसके तहत बुध के रोज़ तकरीबन 1000 मुसल्ह अफराद को ट्रकों के जरिए से इस इलाके से बाहर निकाल दिया गया। इस मुआहदे के मुताबिक मुसल्ह अफराद होम्स के कदीम इलाके से अपने ठिकाने खाली करके बाहर निकल गए हैं। एक वहाबी सलफी मुफ्ती के इस फतवे के बाद कि होम्स का कदीम इलाका जिहाद वाले इलाके में शामिल नहीं है, मुसल्ह अफराद का इनखिला अमल में आया है। मुसल्ह अफराद के मुकम्मल इनखिला के बाद फौज ने इस इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है और इलाके में बिखरे हुए बमों और बारूदी सुरंगों का पता लगाने के बाद उन्हें नाकारा बनाने का अमल शुरू कर दिया, जिसके बाद इस इलाके को क्लियर कर दिया गया। फौज की जानिब से इलाके को क्लियर किए जाने के बाद उन लोगों की वापसी का अमल शुरू हो गया जो दहशतगर्दों के कब्जे की वजह से अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। ہومس کے گورنر نے بتایا ہے کہ دہشت گردوں نے شہر کے رہائشی علاقوں اور سرکاری عمارتوں کو بھی دھماکے سے تباہ کر دیا ہے، جس کا مقصد ان اسناد اور دستاویزات کو تباہ کرنا ہے جو ان کے وجود اور گھناؤنے عزائم کی نشاندہی کرتی ہیں۔ طلال البرازی نے کہا کہ حکومت اور دہشت گردوں کے حالیہ سمجھوتے کے نتیجے میں دہشت گردوں کو شہر ہومس سے نکلنا پڑا ہے، جو حکومت کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ دریاسنا دہشت گرد گروپ جبہت النصرہ نے ہومس کے شیعہ آبادی والے علاقوں نبل اور الزہرہ پر مارٹر گولے داغے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد ہومس کے قدیم علاقے کے لوگوں کو امدادی سامان کی ترسیل کا عمل روکنا ہے۔ ادھر جزیرہ شام نامی کرد آبادی والے علاقے کو بھی شامی فوج نے دہشت گردوں کے قبضے سے مکمل آزاد کرا لیا ہے، جس کے بعد وہاں سے فرار ہو کے عراق میں پناہ لینے والے شام کے کردوں نے بھی اپنی وطن واپسی کا اعلان کر دیا ہے۔ دریاسنا شام کے صدر بشار اسد نے دہشت گردوں کے حملے میں مارے جانے والوں کے لواحقین کے ساتھ ایک ملاقات میں اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ حکومت اور عوام دہشت گردوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صدر بشار اسد نے یہ بات زور دے کر کہی کہ شامی فوج اور عوام نے مل کر دہشت گردوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے اور بعض مغربی اور عرب ملکوں کی سازشوں کو بری طرح ناکام بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے عوام عنقریب دہشت گردوں کے خلاف مکمل کامیابی کا جشن بھی منائیں گے۔
اور اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا، جہاں عوام اور حکومت کے تمام تر اعتراضات اور احتجاجوں کے باوجود امریکہ اور نیٹو کی افواج کے مظالم اور جرائم کا سلسلہ جاری ہے۔ ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قندیل عباس کا تبصرہ۔
جی، اصل میں جب عراق پر یا افغانستان پر یا دنیا کے کئی اور خطوں میں امریکی فوج یا مغربی افواج نے حملے کیے، تو جن فوجیوں کو وہ لے کر ساتھ آئے ہیں ان کی وہ مینٹل ٹریننگ وہ اس لیول کی نہیں کی گئی تھی جس طرح کی ایک جو فوجی ہوتا ہے اس کی ہونی چاہیے، بلکہ اس کے برعکس یہ ہوا کہ ان کے ذہنوں میں مسلم دشمنی کا ایک ایسا بیج بویا گیا اور ایک ایسی نفرت بوئی گئی کہ جب وہ ان علاقوں میں آئے، خصوصاً عراق میں یا افغانستان میں، تو وہاں پر آ کر انہوں نے ایک انتقامی انداز میں کاروائیاں کیں، اور ان کے ذہنوں میں جو تصویر کشی کی گئی تھی کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں، اس کو ایک غلط تصویر کو اپنے ذہن میں رکھ کر ہم نے دیکھا کہ ابو غریب جیل تھی، اگر عراق کی وہ دیکھیں، گوانتانامو بے جیل کو دیکھیں اگر، یا افغانستان کی بگرام جیل میں دیکھیں، تو جیل کے اندر چونکہ فلی ان کی کسٹڈی میں تھے لوگ، ان کے ساتھ انتہائی وحشیانہ اور غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی جنازے کا جلوس بھی جا رہا ہے تو اس پر ہم اس یہ سمجھ کر حملہ کر دیا گیا، تو یہ بھی لوگ خطرناک ہیں، حالانکہ اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں یہ بالکل مشکل نہیں ہوتا آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ فوجی ہیں یا کوئی عام لوگوں کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے انتہائی غیر مہذب قسم کی تصاویر عراق میں بھی دیکھی ہیں کہ جس میں لاشوں کے ساتھ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر مینٹل ٹریننگ کی گئی ہوتی پہلے فوجیوں کی، تو وہ قطعاً ایسا نہیں کرتے، بلکہ اس انداز میں ان کو ٹریٹ کیا گیا کہ جب ایسی جن لوگوں نے کاروائیاں کی بھی تھیں ان کو بھی بظاہر کورٹ نے چارج کیا، لیکن ان کو کوئی ایسی سزا نہیں دی جس سے عبرت پا کر باقی فوجی ایسی کاروائیاں نہ کرتے۔ یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکی فوجیوں کے ذہن میں ایک انتقامی جذبہ اور ایک نفرت کا بیج بویا گیا، اس کی وجہ سے وہ اس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں۔
اور اب رخ کرتے ہیں مصر کا، جہاں نمائشی صدارتی الیکشن کی تیاری پورے شباب پر جاری ہے، اور اسی کے ساتھ منتخب صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹنے والے مین کیریکٹر سابق آرمی چیف اور صدارتی امیدوار عبد الفتاح السیسی نے جہاں ایک طرف یہ اعلان کیا ہے کہ اگر وہ الیکشن جیت گئے تو اخوان المسلمین का मुल्क में कोई वजूद नहीं रहेगा, वहीं खुद अब्दुल फत्ताह सीसी ने और उनकी तशीराती मुहिम के मरकजी दफ्तर और उनकी तशीराती मुहिम चलाने वालों ने ख़ास तौर पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। मुलाहिज़ा फरमाइए इस सिलसिले में हमारा ये तज़िया।
मिस्र के नामजद सदारती उम्मीदवार अब्दुल फत्ताह सीसी इन दिनों आलमी ज़राए इब्लाग की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं और मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की रहनुमाओं ने उनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। उनके बयानात और उनकी इंतखाबी मुहिम से अंदाज़ा होता है कि मिस्र की अबूरी हुकूमत ने मुस्तकबिल के हवाले से पूरी मनसूबाबंदी कर रखी है और फ़ौज की ख्वाहिश के मुताबिक तयशुदा रोड मैप पर अमल दरामद कर रही है। इलेक्शन कम्पेन में अब्दुल फत्ताह सीसी को मुशावरत फराहम करने वाले हजरात सऊदी अरब के किरदार की तारीफ के साथ साथ इंतखाबात में उनकी कामयाबी के बाद के मराहिल में भी सऊदी अरब और असीसी के दरमियान हमाहंगी को अहम तरीन मामला करार दे रहे हैं। असीसी के एक मुशीर खालिद सैफ ने उनके हालिया बयानात का हवाला देते हुए कहा है कि अपने इंतखाब की सूरत में वो सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा करेंगे, जो इस बात की अलामत होगा कि काहिरा रियाज के साथ ताल्लुकात को कितनी अहमियत देता है। इस तरह के बयानात ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब सऊदी अरब को जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी का सबसे अहम इलाकाई हामी बताया जा रहा है। यहाँ तक कि बास खबरों में ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने मिस्र के फौजी सरबराह को कामयाब बनाने के लिए इस मुल्क में भारी सरमायाकारी भी की है। सऊदी अरब खित्ते का वो पहला मुल्क है जिसने मिस्र के मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वालों की हिमायत की थी और बगावत के नतीजे में बरसर इक्तदार आने वाली हुकूमत को तस्लीम कर लिया था। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मिलकर मिस्री फौज की हिमायत याफ्ता अबूरी हुकूमत को फौरी तौर पर $11 अरब से ज्यादा की रकम भी फराहम की थी। लिहाजा जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी पहले ही से सऊदी अरब के एहसान तले दबे हुए हैं। कुवैत से शाया होने वाले जरीदे अल जरीदा ने अपनी हालिया इशात में लिखा है कि अब्दुल फत्ताह सीसी अपनी कामयाबी की सूरत में मिस्र और खलीज फारस तआवुन काउंसिल के रुकन मुल्कों के दरमियान वीज़े की पाबंदियां ख़त्म करने का भी इरादा रखते हैं। वो मिस्र को खलीज फारस तआवुन काउंसिल में मुबस्सिर का दर्जा दिए जाने की तजवीज़ भी पेश करेंगे ताकि इस तंजीम के रुकन ममालिक से इक्तसादी मुआवनत और इमदाद का हुसूल आसान हो सके। इंतखाबी कम्पेन के एक अहम हरबे के तौर पर दिए जाने वाले ये बयानात एक तरफ, खुद अब्दुल फत्ताह सीसी ने उबूरी हुकूमत के लिए सऊदी अरब की बेदरेग हिमायत का शुक्रिया अदा करते हुए सऊदी अरब के शाह मलिक अब्दुल्ला को अरबों का बड़ा भाई करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सऊदी अरब की हुकूमत से ये अपील भी की कि वो मुल्क को अहले शरारत से दूर रखें। अगरचे सीसी ने इस बात की वजाहत नहीं की कि उनकी नज़र में अहले शरारत से मुराद कौन लोग हैं, लेकिन हाल या चंद माह के दौरान जो बात खुलकर सामने आई है वो यह है कि मिस्र की अबूरी हुकूमत ने मुखालफीन और ख़ास तौर से अख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ भरपूर महाज खोल रखा है और इस हवाले से सऊदी अरब का मौक़िफ़ भी तकरीबन यही है। सऊदी अरब की हिमायत की छतरी तले मिस्र में अख्वानुल मुस्लिमीन वालों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता जुमे के रोज़ भी मिस्र के सिक्योरिटी इदारों ने एक कार्रवाई के दौरान अख्वानुल मुस्लिमीन के 22 हामियों को गिरफ्तार किया है। मिस्री अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत के खिलाफ बगावत के बाद अख्वानुल मुस्लिमीन के कई हज़ार कारकुनों और सैकड़ों छोटे बड़े रहनुमाओं को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया गया है और यहाँ तक कि माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी और उनके बहुत से करीबी साथी कई महीनों से जेल की हवा खा रहे हैं। सऊदी अरब ने भी मिस्र में अख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ जारी क्रैकडाउन पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार करते हुए अपने मुल्क में भी अख्वानुल मुस्लिमीन की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। यहां तक कि सऊदी अरब के अख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ इकदाम के बाद कतर के साथ उसके ताल्लुकात में भी काफ़ी तलखियाँ पैदा हो गई हैं। मिस्र में अपने मखसूस मफादात के पेश नज़र सऊदी अरब जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी की हिमायत में एड़ी चोटी का जोर लगाने पर मजबूर है। अलबत्ता इस सिलसिले में ऐसा महसूस होता है कि उसे अमरीका की भी भरपूर तायद हासिल है, क्योंकि हुकूमत अमरीका ताहाल मुर्सी हुकूमत के खात्मे को फौजी बगावत करार देने से गुरेज करती चली आई है।
और नाज़रीन, अब आते हैं प्रोग्राम के अहम तरीन और आखिरी हिस्से की तरफ, जिसमें आज हम ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात पर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ एक आला सतही वफ्द लेकर इतवार को सरकारी दौरे पर तेहरान पहुंचे। उन्होंने तेहरान में सदर डॉक्टर हसन रूहानी और नायब सदर इसहाक जहांगीरी से मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के बाहमी रवाबित में ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया। اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے سیاسی اور ابلاغیاتی امور کے ماہر گل جماعت حسین صاحب کو جو یہاں تہران اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. گل جماعت حسین صاحب اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے.
جی
سب سے پہلے
جی
تو ہم پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے دورے تہران کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں, آپ کی نظر میں کیا ہے؟
میری نظر میں نواز شریف کا جو دورہ ہے اور اس سارے تناظر میں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو حالیہ دنوں میں کچھ تناؤ رہا ہے سرحد کیونکہ کچھ دہشت گردوں نے ایران کے جو سیکیورٹی گارڈز بارڈر گارڈز ہیں ان کو اغوا کیا اور پاکستان میں لے گئے, جو رپورٹس آئی تھیں, اور ان کے بعد ایک کو پتہ چلا کہ ایک کو شہید بھی کر دیا گیا اور پانچ کی صرف رہائی ممکن ہوئی, وہ بھی ایرانی حکومت کی کاوشوں کی وجہ سے. تو پاکستان میں اس کا جو رول رہا ہے مثلا بہت ایران کو اس سے شکایت ہے, گلہ ہے کہ مثلا بہت ہی ایک کیا کہیں سست روی کا جو رول رہا ہے, مثلا اس طرح کا کردار پاکستان نے نبھایا نہیں ہے جس طرح کا ایک برادر اسلامی ملک سے ایران توقع کر رہا تھا. تو اس تناظر میں اور ویسے بھی یہ تو ایک اس کا اسپیکٹ ہے, اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں نواز شریف کا جو دورہ ہے ایران کا وہ بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو وزیر اعظم ہے وہ ایگزیکٹو جو پاورز ہیں ساری اس کے پاس ہے,
جی
پارلیمانی حکومت ہے. تو پچھلے جو وزیر اعظم آئے تھے یوسف رضا گیلانی میرے خیال میں کوئی 3-4 سال پہلے آئے تھے, اس کے بعد یہ سب سے اہم دورہ ہے. زرداری تو آتے رہتے تھے جو سابق صدر تھے, لیکن ان وہ کیونکہ صدر کا عہدہ زیادہ نمائشی ہے, اصل جو پاورز ہیں پاکستان میں وہ
وزیر اعظم
کے پاس ہیں اور وہی فیصلے کرتے ہیں. اور پھر یہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ کچھ جو مہینے گزرے ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور جو سعودی عرب کے روابط ہیں وہ بہت پہلے سے زیادہ
نزدیک کلوز ہوئے.
تو اس حوالے سے کچھ لوگ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. مثلا یہ ایران کی کاسٹ پر تو سعودی عرب کے ریلیشنز نہیں پاکستان کے ساتھ امپروو ہو رہے. تو اس سارے تناظر میں سمجھتا ہوں یہ جو پرائم منسٹر کا وزٹ ہے نواز شریف کا یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. اور اس میں ایک تو یہ, دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی دو رائے ہیں. ایک پاکستان جو نواز شریف کی گورنمنٹ ہے, سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہے جو سعودی عرب کے قریب رہی ہے. اور
اچھا یہ یہاں پر گلجمع صاحب ایک بات میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہو جائے.
جی جی
دیکھیے, جہاں تک سعودی عرب سے پاکستان کی قربت کا سوال ہے,
جی جی,
تو اسلامی جمہوریہ ایران نے اس پر کبھی اعتراض نہیں کیا.
جی جی
پاکستان کے کسی بھی ملک سے کتنے ہی قریبی روابط ہوں, چاہے وہ سعودی عرب ہو یا کوئی اور ہو.
جی جی
الا یہ کہ البتہ اسلامی جمہوریہ ایران ملک سے اپنے روابط کو اہمیت دیتا ہے کہ ایران کے ساتھ اس کے روابط کیسے ہیں.
جی جی میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن اس کا انڈائریکٹ اثر ہوتا ضرور ہے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ پاکستان ایران کے جو سعودی عرب کے آفیشلز آئے ہیں پاکستان میں, انہوں نے $1.5 بلین کی جو $1.5 ارب کی امداد کا اعلان کیا اور اس طرح پاکستان کی کرنسی جو ہے مضبوط ہوئی. تو پاکستان میں میڈیا نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ اس قیمت پر تو نہیں ہے کہ آپ پاکستان ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا منصوبہ ختم کرنے والے ہیں یا یہ, تو اس کا اثر ہوتا ہے. ایران نے بالکل یہ کبھی نہیں کہا, لیکن اس طرح کی جب تعلقات ان نیچرلی کہتے ہیں وہ بڑھتے ہیں تو اس کے کچھ شکوک و شبہات پیدا ضرور ہوتے ہیں.
جی
یہ دیکھیں, میں یہی بات کرنے والا تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ ٹھیک ہے, یہ سعودی عرب کے قریب رہی ہے اور آپ کو پتہ مشرف سے بچانے والا بھی سعودی عرب تھا, اس کو جو بچا کے لے کے گئے ہیں سارے خاندان کو. لیکن میں نواز شریف کے بارے میں بھی یہ بات کہوں گا آپ کو کہ نواز شریف کا جو خاندان ہے وہ بزنس مین ہے, بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپروچ جو ہوتی ہے زیادہ تر سیاست میں ہوتے ہوئے بھی بزنس کو اہمیت دیتے ہیں. جب بھی آپ دیکھیں بزنس کو اہمیت دیں گے یا کاروبار کو اہمیت دیں گے, اقتصادی جو ہے اپنے ملک اقتصادی ترقی کو اہمیت دیں گے, تو آپ کے ہمسائے سب سے اہم بن جاتے ہیں.
بالکل,
کیونکہ جو تجارت ہوتی ہے جو سب سے زیادہ اچھی تجارت ہوتی ہے
وہ پڑوسیوں
کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. میں یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں. ایران जो है चिकन है मुर्ग मसा मुर्गी का जो गोश्त है वो मंगवाता है ब्राज़ील से या मैक्सिको से, या जो शिकर है शुगर है वो मंगवाता है ब्राज़ील से। आप देखें कि 12,000 किलोमीटर से ये चीज़
चूंकि जी
आएगी।
जी एक
जी
मिनट, हमारे पास चूंकि वक्त कम है
जी जी
तो हम ज़रा सा गुफ्तगू को समेटना चाहेंगे।
जी
ये जो आज जो नवाज़ शरीफ साहब एक आला सती वफ्द लेकर पहुँचे, उनका
जी
इस्तकबाल हुआ,
जी
और जब तक हम स्टूडियो में आए थे
जी
उस वक्त तक ईरान के सदर और नायब सदर से
जी
उनके बाज़ाबता मुज़ाकरात अंजाम पा चुके
जी
थे। मुमकिन है कि इस दरमियान कुछ और ईरानी अहदेदारों से उनकी मुलाकात हुई हो, मुज़ाकरात हुए हों। ये जो सदर और नायब सदर से जो मुज़ाकरात हुए, इसकी कुछ तफसीलात आप बताएंगे, इनमें किन बातों पर
देखें,
डिस्कस हुआ?
मैं आपको बताऊं, सबसे जो अहम है ना इस सारे सिलसिले में, वो इस पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मशीर है, उसमें तारिक फातमी साहब हैं जो फॉरेन ऑफिस से हैं, और दूसरे हैं जो ऑलमोस्ट डिफेक्टो फॉरेन मिनिस्टर हैं सरताज अजीज साहब। ये बहुत ही अकलमंद लोग हैं और बहुत ही मंझे हुए जो है ना डिप्लोमेट्स हैं और सियासतदान हैं। इन्होंने नवाज शरीफ को ये बावर करा दिया है कि आप ईरान के मसाइल सुने। ईरान की सबसे बड़ी शिकायत क्या है कि आप ईरानी दहशतगर्दों को जो ईरान में दहशतगर्दी के वाकयात करके पाकिस्तान में पनाह देते हैं, उनके साथ हमारे साथ तआवुन करें। अच्छा, वो इसके साथ पाकिस्तान को इस गवर्नमेंट को राज़ी किया है, और मैं समझता हूँ कि इस विज़िट ये विज़िट फाइनलाइज ही उस वक्त हुआ था। आपको पता होगा, इस याद होगा, इससे पहले सरताज अजीज़ आए थे और ईरान के वज़ीर दाखिला पहले गए थे।
जी,
तो
अभी हाल ही में
ये सारी टेक्निकलिटीज़ जो होती है ना, ये पहले फाइनलाइज होती हैं, फिर विज़िट इस तरह का आला सती का जो विज़िट है वो रखा जाता है। तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये मसाइल सारे जो हैं, या बहुत हद तक जो है 80% से 90% तक ये हल हुए, उस पर एक कंप्रोमाइज़ हुआ है और उसकी फॉर्मेलिटीज़ तय हुई हैं, फिर ये विज़िट तय हुआ है। एक मसला जो अहम सबसे रह जाएगा वो ये तो ईरान का, दूसरा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, आपको पता पाकिस्तान में दहशतगर्दी से भी बड़ा मसला तवानाई का बहरान है।
बिल्कुल
दहशतगर्दी तो कुछ खित्तों को या कुछ
जी,
इलाकों को मुतासर कर रही है, तवानाई का बहरान
पूरे
हर
पाकिस्तान
पूरे पाकिस्तान को, हर देह को भी जो है मुतासर
जी
कर रहा है। तो पाकिस्तान की तवानाई का बहरान ईरान की गैस पाइपलाइन के बगैर हल नहीं हो सकता। एक दूसरी कोई उसमें सऊदी अरब हो अमेरिका हो कोई हल नहीं कर सकता,
जी
सिर्फ हमसाए हल कर सकते हैं, और ये भी कामलन हल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान को और गैस पाइपलाइन चाहिए, अफगानिस्तान और जो तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान की गैस पाइपलाइन है वो भी चाहिए होगी, लेकिन शुरू यहाँ से होगा।
जी अच्छा,
और
आते हैं ये सरहदी जो सिक्योरिटी का मसला है
जी
जिस पर ईरान ने काफ़ी हसासियत
जी जी
दिखाई है, और वजीर दाखला के दौरे इस्लामाबाद में भी ये मसला उठाया गया था,
जी जी
उसमें कुछ बातें तय भी हुई, कुछ
जी
मुआहदे, और तय ये पाया कि जो मुआहदा है उस पर बाज़ाबता
जी
नवाज शरीफ साहब के दौरे तेहरान में दस्तखत होंगे।
जी
ये जो सरहदों पर जो अनरेस्ट है
जी
या उस तरफ से कुछ काफ़ी अरसे से दहशतगर्द, कभी जुंदुल्लाह के नाम से या
जी
किसी और नाम से ये इंतहा पसंद दहशतगर्द हैं, इनके पीछे जुंदुल्लाह के पीछे तो अमेरिका था बिल्कुल,
जी जी जी
और अब वो ग्रुप जब ख़त्म हुआ रेगी का जो ग्रुप था,
जी
अब जो मौजूदा ग्रुप है
जी
इसके लोग जो आते हैं यहाँ ईरान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं और
जी
भाग के पाकिस्तान चले, इनके पीछे असल ताकत कौन है?
देखिए, इनके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने ग्रेटर बलूचिस्तान का नक्शा दिया था। आपको शायद याद हो कि 10 साल पहले कोई न्यू कंजर्वेटिव्स ने ये पूरा प्लान दिया था कि जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, ईरान का है और अफगानिस्तान का, इनको मिला के एक शोशा छोड़ा था, जो फितना छोड़ा था, एक बड़ा बलूचिस्तान बनाया जाए। वही लोग हैं। वो आपको पता है पाकिस्तान में 10 साल से जो डेडली जो इंसर्जेंसी जारी है हुकूमत के खिलाफ बलूचिस्तान में, अच्छा वही लोग जो पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, वही पनाह देते हैं ईरानी दहशतगर्दों को भी। और उनके पीछे कौन लोग हैं? उनके पीछे ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि उनके पीछे CIA है, उनके पास पीछे MI6 है, मोसाद है। क्यों? इससे मकासद बड़े हासिल होते हैं ना उनके, मसा तीन ममालिक के दरमियान इख्तलाफात डाल देते हैं और हो गए। आप देखे हैं एक हद तक पाकिस्तान और ईरान में कशीदगी पैदा कर दी थी, ये तो दोनों ममालिक की मैं समझता हूँ लीडरशिप की हिकमत अमली है, हिकमत है कि उस पर काबू पा गए, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अभी भी इख्तलाफात हैं।
जी
और ये इस मनसूबे का सारा जो था वो ये था कि इस सारे रीजन को डिस्टेबलाइज किया जाए, गैर मुस्तहकम किया जाए, और मैं समझता हूँ ये वही लोग हैं। ये एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है ईरान में और पाकिस्तान में, राहबरों को जो सियासी राहबरान है उनको ये समझने की ज़रूरत पेश आएगी कि मतलब कैसे इसको डिफ्यूज़ करना है, कैसे हल करना है।
जी गुलजमा साहब, अब आते हैं ये गैस पाइपलाइन की तरफ।
जी
आपने अपनी गुफ्तगू में इशारा किया कि ईरान के लिए दहशतगर्दी से भी ज़्यादा अहम गैस तवानाई का बोरान पाकिस्तान के लिए।
जी जी
तो अलबत्ता यह कि दहशतगर्दी भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक अहम मसला है।
जी
अगर पाकिस्तान के अंदर से कुछ दहशतगर्द पड़ोसी मुल्क में जाके दहशतगर्दी करते हैं उस मुल्क को नुकसान पहुँचता है, लेकिन खुद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और कौम है उसकी इमेज को जो नुकसान पहुँचता है बैनुल अक़वामी सतह पर उसकी तलाफी तो अपनी जगह पर। लेकिन ये जो तवानाई का बहरान है,
जी जी
गैस पाइपलाइन का मंसूबा ये मुआहदा हो चुका है दोनों मुल्कों के दरमियान।
जी
दोनों मुल्कों के उस वक्त के सुदूर इस पर दस्तखत कर चुके हैं।
जी
ईरान के अंदर जो पाइपलाइन है वो सरहद तक पहुंच चुकी है।
जी
अब जो भी अमल करना है वो पाकिस्तान को। गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है ये ईरान के लिए जितना अहम है उससे कई गुना ज्यादा पाकिस्तान के लिए अहम है।
जी जी
इसके बाद अगर इसमें रुकावटें आ रही हैं तो असल वजह कहाँ है? दो मिनट का वक्त है हमारे पास।
जी असल वजह पाकिस्तान की हुकूमत के में है, पाकिस्तान की या इससे भी बढ़कर मैं कहूँ कि जिसको सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। क्यों? देखिए पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो अमेरिका के और सऊदी अरेबिया के करीब रही है बदकिस्मती से। अभी भी वो इसको लॉलीपॉप दे रहे हैं कि मसलन इसके हम मुतबादल कोई चीज़ दे देंगे। जब भी पाकिस्तान को ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि मुतबादल इसका है नहीं, ईरान गैस पाइपलाइन का मुतबादल है नहीं, तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान गैस पाइपलाइन भी अगर पाकिस्तान को चाहिए तो वो अजाफी चाहिए, क्योंकि एक उभरती पाकिस्तान एक उभरती हुई ताकत है, मसलन उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। सारी जो उभरती हुई मुआशियतें हैं आप देखिए जो नेक्स्ट 11 जिसका कॉन्सेप्ट है उसमें ईरान भी है पाकिस्तान भी है सब है, तो उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, पाकिस्तान को एनर्जी की ज़रूरत है, इसके बगैर मसला हल नहीं होगा। और ये मसला हल होगा इंशाल्लाह, ये जो अक्ल है ना लगता है आती जा रही है पाकिस्तानी लीडरशिप को भी, और ईरान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सेंसिबल लीडरशिप है। अब मसलन आपने देखा जैसे एक सदर रूहानी है या मसलन फॉरेन मिनिस्टर ज़रीफ हैं, ये बहुत ही अक्लमंद और मैं समझता हूँ दाना लोग हैं, इनको मसाइल हल करने का पता है कि कैसे हल करना है। इससे भी गुंजलक मसाइल ये तो बड़े सादे से मैं समझता हूँ, जो जैसे आपने देखा है कि मगरब के साथ जैसे अपने मसाइल हल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये भी हल होंगे। मुझे लगता है कि कोई राह और नज़र नहीं आती कि ये हल होते हुए इंशाल्लाह नज़र आ रहे हैं।
जी
जी
एक बात और कि ये नवाज शरीफ साहब के आने से पहले
जी
पाकिस्तानी ज़राए ने जो मौजूआत लिखे थे कि इस दौरे में किन किन मौजूआत पर बहस होगी उसमें गैस पाइपलाइन और ये सरहदों की सिक्योरिटी के साथ एक मसला और था, शाम का मसला।
जी जी जी
कि शाम के मसले पर भी इसमें
ये
तो
बहुत
इसमें
ये
पाकिस्तान का क्या रोल?
बहुत अच्छा सवाल है। पाकिस्तान की हमेशा पोजीशन रही है कि बशर अल असद की जो हुकूमत है वही कानूनी हुकूमत है और टेररिज्म हो रही है उसके खिलाफ, दहशतगर्दी हो रही है। जब ताज़ा जब सऊदी अरब ने $1.5 बिलियन दिया था उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत का मौकफ ऐसे लगा कि बदल रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस जो है वो फैसले करता है असल, और वो करीब है आर्मी के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के। उन्होंने फौरन इस आइडिया को इस ख्याल को रद्द किया, उन्होंने कहा नहीं हमारा शाम पर वही मौकफ है जो पहले था। और मैं समझता हूँ कि अगर इस गवर्नमेंट ये सोच भी रही थी मसलन कोई दूसरे ख्यालात तो इसको फॉरेन ऑफिस मजबूर करेगा वही पोजीशन लेने के जो पाकिस्तान की ट्रेडिशनल पोजीशन है शाम पर। और जैसे और मैं मिसाल लीबिया पर सारी दुनिया दूसरी तरफ थी, पाकिस्तान ने वो जो कजाफी के साथ अपने जो पहले के ट्रेडिशनल तलकात थे वो आखिरी दम तक रखे। और मैं समझता हूँ ये तो खैर बिल्कुल मुख्तलफ सूरत हाल है, पाकिस्तान की पोजीशन शाम पर चेंज नहीं होगी, मेरा अपना तजिया ये कहता है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।
जी
आपने ज़हमत की तशरीफ लाए। बहरहाल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब एक आला सतही वफ्द लेकर तेहरान आए हैं, तेहरान में यहाँ के आला जो अहदेदार हैं उनसे उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है, और उम्मीद यह है कि अगर थोड़े बहुत कुछ इख्तलाफात तेहरान और इस्लामाबाद में हैं तो वो इस दौरे में हल हो जाएंगे और दोनों मुल्कों की दोस्ती पहले से ज़्यादा मुस्तहकम होगी। इसी के साथ प्रोग्राम ज़ाविये निगाह अपने अख्ताम को पहुँचता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़। शुक्रिया जी।